ஓம் சாந்தி. ஸ்ரேஷ்ட புருஷார்த் கீ சஹஜ் விதி, இஸ்லிய மேனே ஆப் சப்கோ புலாயா கி ஆப் சபி உத்தர் தேங்கே அச்சே. ஸ்ரேஷ்ட புருஷார்த் கீ சஹஜ் விதி ஹை ஸ்மிருதி ஸ்வரூப் ஹோனா. யோக லகானா தோ ஹை, லேக்கின் ஸ்மிருதி கா அர்த் ஹோதா ஹை பாபா நே ஆக்கர் ஹமே பஹுத் குச் யாத் திலாயா ஹை, ஜோ ஹம் பூல் கயே தே உஸ்கோ யாத் கர்னா. ஸ்மிருதி கர்த்தே கர்த்தே ஹம் உஸ்கா ஸ்வரூப் பன் ஜாதே ஹை. சோட்டா சா ரோஜ் கா உதாரண ஆப் லே, ஆப் ட்ரெயின் சே யாத்ரா கர் ரஹே ஹை, 8 ghante கி யாத்ரா ஹை, ஆப் தக் கயே ஹை, அபி ஆதா ghanta பச்சா ஹை, ஆப்கோ பதா சலா அப் ஆதே ghante மே கர் பஹுன்ச் ஜாயேங்கே, கேசி ஃபீலிங் ஹோகி? ஜோ 7.5 ghante கி தகான் ஹை அப் வோ உதர்னே லகேகி. ஸ்மிருதியாக பதலனை லகேங்கி, குச்சு ஓர் யாத் ஆனே லகேகா, அப் சப் குச்சு பதலேகா. பாபா நே ஹமே பஹுத் குச்சு யாத் திலாயா ஹை. ஓர் ஏக் உதாரண தே தேதா ஹூன், ஃபிர் ஆப்ஸே ஹம் ப்ரஷ்ன பூச்சேங்கே. சப்கோ உத்தர் ஆதே ஹை, கோய் கஹரே நஹீ ஹை. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா மே वहां तो यही दिखाया कि अर्जुन को मोह हो गया और उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया. श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, वो तो हम जानते हैं किसने दिया और कहां दिया. दूसरे अध्याय में ज्ञान है सारा आत्मा का, कि तुम भी आत्मा हो अजर अमर अविनाशी, और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं जिनके लिए तुम्हें मोह पैदा हो रहा है वो भी आत्माएं हैं, वो भी नहीं मरेंगी, न तुम मरोगे न वो मरेंगे, सब आत्माएं हैं. जागृति आई. फिर अगले अध्यायों में योग का ज्ञान दिया है, 3, 4, 5, 6, ये 6 तक अध्याय बहुत गहरा ज्ञान है. इनमें कोई भी उसको समझ नहीं पाया संसार में, और न समझने का कारण वही रहा कि नाम श्री कृष्ण का लिख दिया, तो जो गुह्य राज हैं वो बुद्धि से बाहर चले गए. फिर जब श्री अर्जुन नहीं मान रहा है कि मेरे से युद्ध नहीं होगा, तो दिखाया कि श्री कृष्ण ने उसको अपना विराट रूप दिखाया, और उसमें एक स्वरूप है कि मैं महाकाल हूं और सबके संहार के लिए ही यहां आया हूं. और दिखाया गया महाकाल का मुंह खुला है, अग्नि जल रही है, और बहुत सारे योद्धा कौरव पांडवों की तरफ के उसमें जा रहे हैं. तो कहा अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम युद्ध करके यश प्राप्त कर लो. जागृति आई और अच्छी अच्छी बातें सुनाई. लास्ट में अर्जुन कहता है मुझे स्मृति आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं. स्मृति आ गई, मैं आत्मा हूं. स्मृति आ गई, इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है. स्मृतियां. अब हम ये भी तर्क दे सकते हैं कि 4 ghante ज्ञान देकर किसी का मोह नष्ट हो जाए और उसे स्मृतियां आ जाएं, ये संभव नहीं है. हम लोग कितने कितने सालों से अभ्यास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है. अर्जुन को 4 ghante में गीता ज्ञान देने में 4 ghante तो लगे होंगे, ये थोड़ा है कि 2-5 मिनट में सारा ज्ञान दे दिया. वो तो न जाने क्या क्या बातें करते हैं. अब बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई. पहली बात कौन सी याद दिलाई? तुम आत्माएं हो, उसमें और अच्छी अच्छी बातें याद दिलाई। जैसा ये शरीर तुम्हें है वैसे शरीर तुमने अनेक लिए हैं और छोड़े हैं। कभी तुम नर रूप में रहे, कभी नारी रूप में, कभी राजा बने, कभी प्रजा बने, कभी पुजारी बने, कभी बहुत ऊंचे थे फिर नीचे आए, सब स्मृतियां दिलाई। और अब आखिर की क्या स्मृति दिलाई? ये चक्र पूरा हुआ, तुम्हारे 84 जन्मों का ये ड्रामा पूरा हुआ, अब तुम्हें वापिस चलना है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। स्मृति दिलाई। और क्या याद दिलाया हमें? भाइयों का नंबर है, बोलो। हाँ बताओ उनमें से, जब हम इस संसार में आए, बोलो क्या याद दिलाया? जब हम इस संसार में आए राजीव, क्या थे, क्या थे भाई लोग, बोलो। आपको नहीं पता, भाई लोग बोलो, जिसको नहीं आता वो हाथ उठा दो। अच्छा तो बाकी मैं उनसे पूछूं जिसको आता है। नहीं पता आपको, जब हम इस संसार में आए तो क्या थे? नहीं, भाइयों को देखो पता है ही नहीं, बेचारे बोले हैं। हम सब देवी देवता थे। थे या नहीं भाई लोग भी, या ये काम बहनों को ही दिया हुआ? थे, कौन कौन थे जरा हाथ उठाओ, मैं जगाना चाहता हूँ। भाई तो ठंडे बैठे बिल्कुल। हम देवता थे, ये बात किसी को नहीं पता था। भारत में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, शायद 84 हैं, मुझे पूरा नंबर 51 है कि भाई शंकर जी जब सती के सब को लेकर जा रहे थे तो उनके अंग जहां तहां गिरे। तो अभी हम थे एक जगह, कहां, बिलासपुर में, वहां एक मंदिर था महामाया का, कहा यहाँ राइट हैंड गिरा था सती का, यहाँ भी है। तो मैंने एक विद्वान से पूछा ये कब की घटना है, कब हुआ था ऐसा? अब ये तो न किसी ने उनसे पूछा था, उन्होंने न कभी सोचा था कि भाई ये तो पता नहीं, बहुत बहुत साल हो गए, कह तब से मंदिर बने हुए हैं, किसने देखा था कि उसका हाथ यहाँ गिरा, आंखें यहाँ गिरी थी, पैर यहाँ गिरे। तो देखो ये कैसे कैसे बनाई है संगम युग की कहानियां। हम सब देवी देवता थे, बहुत बहुत ही प्रैक्टिकल सत्य जो संसार में किसी को पता नहीं। और बोलो क्या याद दिलाया बाबा ने? याद क्या दिलाया? अब स्वमानों की बात पर आ जाए। हमें याद दिलाया तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो, तुम पूर्वज हो, विश्व कल्याणकारी हो। फिर भाई चुप हैं, आधार मूर्त हो। चेयरमैन तो बोलो कुछ है? उद्धार मूर्त हो। बहने बोले पीछे वाली क्या याद दिलाया हैं? मास्टर बीज रूप हो, बोलो मास्टर सर्व शक्तिवान हो। पीछे वाली बहने बोले शिव शक्तियां हो। और बोलो कल्प कल्प के विजय रतन हो। देखो मास्टर भगवान भी हो, बहुत अच्छा। ठीक है आप लोग जग गए हैं, अब जग गए, अब मुझे जगाने की जरूरत नहीं, भाई लोग भी जग गए। याद दिलाकर हमारी अंदर की सोई हुई चेतना को जगा दिया। अभी पीछे मुरली में आया था, तुम्हें माया को जीतने की हिम्मत कैसे आती है? उत्तर था जब तुम्हें याद रहता है कल्प कल्प हमने इस माया को जीता है, हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं। तो जब कल्प कल्प जीता है तो अब भी हमारी जीत निश्चित है। उमंग आ गई ना, किसी बीमार व्यक्ति को भी कोई कह दे अच्छा डॉक्टर तुम ठीक हो जाओगे, हिम्मत आ जाती है। शास्त्र वालों ने क्या सुना दिया था, देवता भी पवित्र नहीं थे। देवताओं के साथ एक शब्द है शास्त्रों में, भोगी थे। अभी हाँ वो तो दिखाया ही है, देवताओं के लिए है भोगी थे। अब भोग तो रहते वो प्रारब्ध, लोगों को इसका पता नहीं चला कि उन्होंने कब ये प्रारब्ध पाई थी, इसका कोई ज्ञान नहीं था, तो सोच लिया वो भी विकारी थे सब। मैं पूछा करता था लोगों से, जब हम लोग बहुत तर्क वितर्क करते थे, कि देवताओं के चित्रों को मंदिरों में सबको छूने की आज्ञा नहीं है, क्यों? देवताओं के चेहरे पे जो तेज है क्या वो है पवित्र लोगों के चेहरों पे हो सकता है? ठीक है, इंद्र की कहानियां ऐसी वैसी लिख दी, लोगों ने सोचा सब देवता ऐसे थे, ऋषि मुनि भी ऐसे ही थे, तो हिम्मत हरा दी, मनोबल गिरा दिया। बाबा ने आते ही कहा नहीं, तुमने ही माया को जीता है, तो मनोबल बढ़ा दिया, ये स्मृतियां दिलाई। तो हमें याद रखना है, स्मृतियों से हमारी सोई हुई अंदर की शक्तियां, हमारे सारे गुण, हमारी पवित्रता जग जाती हैं। अगर हम ये याद करेंगे, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे तो देवत्व जगने लगेगा। ये अभ्यास सबको करने हैं। हमारा लक्ष्य केवल योग लगाना नहीं, देखो एक काम है हमारा, हम सब ने जो विकर्म किए हैं उनको जलाना, यानी आत्मा में जो गंदगी आ गई है उसको खाली कर देना है हमें, लेकिन खाली करके भरना भी है सद्गुणों से, शक्तियों से, प्योरिटी से, हमें भरना भी है स्वयं को। तो पावरफुल योग से हमारे विकर्म विनाश होंगे, लेकिन अगर हम बाबा से बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हो तो क्या मिलेगा? बहुत सुख। उस सुख की भी हमें जरूरत है, उससे हमारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। अगर हम सर्वशक्तिवान से योग लगा रहे हैं पावरफुल, तो हमें क्या मिलेंगे? शक्तियां। तो हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे, विघ्नों से घबराएंगे नहीं, माया से डरेंगे नहीं, आगे भी जो कुछ होगा इस संसार में विनाश, उससे भी हम घबराएंगे नहीं। ज्ञान दिया बाबा ने बहुत सुंदर, सुदर्शन चक्रधारी बनाकर हमें साक्षी भाव में स्थित किया। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है हमारी। तो केवल योग नहीं लगाना, लेकिन साक्षी भी होना है, ताकि हम आने वाले समय में महाविनाश को साक्षी होकर देखें, उसका इफेक्ट ना हो जाए हम पर। मैंने बहुत लोग देखे, मैं साक्षी होके देखता था हूं। एक बहन बहुत अच्छा योग करती, बहुत अच्छा, अचानक हुआ ये काम, उसके पति को कैंसर हुआ, वो विज्ञान में था, और 15 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली की है, मेरे से बात करती थी, बाबा से मिलने आई, तभी बस कुछ ही दिन के बाद। बेचारी रो भी नहीं सकती थी लोगों के सामने, बहुत अच्छी स्थिति थी। मेरे आगे आंसू आ गए उसको, मैंने कहा तुम चिंता न करो, निकालो आंसुओं को, क्योंकि वो जितना दबाते हैं अंदर में भारी हो जाती है। तो हल्की हो गई, एक ही प्रश्न पूछा, मेरे साथ बाबा ने ये क्यों किया? उत्तर देंगे आप? बोलो। बाबा ने नहीं किया। ये देखिए, मृत्यु एक ऐसा सत्य है, ये भगवान के हाथ में नहीं, ये मनुष्य के कर्म का खेल है। जब जिसका कर्मों का खाता पूर्ण हो जाता है, उसको जाना ही है, क्योंकि गर्भ में जो उसका शरीर बन रहा है, उसके वाइब्रेशन से आत्मा को इधर से खींच रहे हैं। छोटी सी घटना भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसे भी लोग हुए, एक सीढ़ी, एक स्टेप उतर के गिर गए और मर गए। इसमें किसी का दोष नहीं कि बाबा ने बचाया क्यों नहीं, वो उसका समय पूर्ण हो गया था। अब बाबा की मदद ये है कि उसे सहज भाव से ले जाकर नए शरीर में ले जाए, कष्ट न हो। और हमारी ये है कि हम अपनी स्थिति को ज्ञान बल से, योग बल से संभालें। अब इसकी जरूरत है, तो हम योग के साथ साथ अपने अंदर ज्ञान का बल, श्रेष्ठ स्मृतियों का बल, पवित्रता का बल भरें और अपने देवत्व को जागृत करें। इसलिए बहुत जरूरी है पांच स्वरूपों का अभ्यास करना। ये स्वदर्शन चक्र है, इसको छोटी बात नहीं समझेंगे। अब रोज की मुरलियों को इस दृष्टि से सुनो, सुनते होंगे आप, कल फिर सुनना, कि बाबा सामने बैठकर हमें कुछ याद दिलाता है रोज। मैंने तुम्हें राजभाग्य दिया था, तुमने गवा दिया, मैं फिर से देने आया हूं। सोचना इस पे गहराई से। जो सचमुच राज्य के अधिकारी थे, उन्हें तुरंत फील हो गए सत्य बात, हमें राज देकर गया था बाबा, हमने गंवा दिया माया के वश, फिर देने आया है। तुम अपने तन मन धन से भारत पर दैवी स्वराज की स्थापना कर रहे हो, ये जगाने की बातें हैं हमें। तुम्हारी पवित्रता इस संसार के लिए, इस प्रकृति के लिए वरदान है, तो हम इन चीजों को भी याद रखा करें। ये भूल जाती हैं तो क्या होता है, व्यर्थ व्यर्थ। संसार में सबसे बुरी चीज जो ब्राह्मणों को कमजोर बनाती है, व्यर्थ। कोई बातों में रहते हैं, व्यर्थ बातों में रुचि ज्यादा रहती है, अपना लक्ष्य और अपना महान कर्तव्य भूल जाते हैं। किसी ने बोला था कि हमारा एक स्वमान है, हम पूर्वज हैं। पूर्वज माना, बोलो, पूर्वज माना, हाँ पूर्वज माना जो घर को संभालते रखते। तो हम पूर्वज घर को संभालने वाले नहीं, कुछ दुनिया को संभालने वाले पूर्वज। पूर्वज माना, ठीक बोल रहे आप सभी बड़े। सब आ गई ना आपकी बात है, सृष्टि के बड़े, एक घर के बड़े नहीं, सृष्टि के बड़े हैं हम। क्या हमें ये स्मृति आती है? चाहे आप आयु में छोटे हैं, उसका कोई महत्व नहीं इसमें। हम इस सृष्टि के बड़े हैं, हमें क्या क्या करना है इसको याद रखना है सभी को। हम बड़े हैं तो बड़ों का काम सबको प्यार देना, रास्ता दिखाना, अंधकार मिटाना, पालना करना, ध्यान रखना। बड़े ध्यान ही तो रखे ना। मान लो कमाने वाले छोटे भी हो गए हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, पोतरे ही बड़े हो गए और वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बड़े का काम है सबको सही रास्ते पर रखना, अंधकार दूर करना। भले ही कलयुग के अंत में ये बात तभी बिगड़ गई है, लेकिन पूर्वज यही करते हैं। हम पूर्वज हैं, हमें बाबा के शब्द हैं, क्या तुम सृष्टि का चक्र लगाते हो, देखभाल करते हो सब धर्मों की? बहुत बड़ी बातें कह दी थी बाबा ने, तब हमारी भी समझ में नहीं आता, हम छोटे थे आपकी तरह ही, यही की बातें। तुम बड़े हो, सृष्टि का चक्र लगाते हो, सबकी देखभाल करते हो, तुम्हारी वंशावली सुखी तो है। ये डीप रियलाइजेशन, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा तो नहीं कि पूर्वज आत्माएं अपने में ही उलझ कर रह गई हैं, तेरे मेरे में अटक गई हैं, छोटी बातों में उलझ गई हैं। बड़ी आत्माएं, बड़ेपन में रहने वाली आत्माएं छोटेपन में तो नहीं रहने लगी हैं। सबको सोचना है। हमने दो बच्चे अभी ऐसे देखे नजदीक में, एक डेढ़ मास के अंदर बच्चे जो हैं तो छोटे बच्चे, पर बात बुजुर्गों वाली करते हैं। मैं तो उनको देखते ही उनके माँ बाप को बता दिया था, ये तुम्हारे कल्याण के लिए आई हैं आत्माएं तुम्हारे घर में, इनको छोटा ना समझना, ये महान आत्माएं भेज दी हैं बाबा ने तुम्हारे घर में। बिल्कुल बड़ी बात करते हैं वो, छोटी बात ही नहीं। आयु 6-7 साल और बातें 60 साल वालों जैसी। ये बड़ापन है ना, विचारों का बड़प्पन। तो हम सभी ध्यान दें, हमें अपने विचारों को बड़ा करना है, छोटे विचार न रह जाएं। स्वार्थ के विचार छोटे विचार हैं, मुझे ही सब कुछ मिले ये विचार छोटे विचार हैं। मेरा नाम हो जाए, केवल मेरा ही नाम हो, ये बोलो छोटे विचार हैं। ईर्षा द्वेष ये छोटे विचार वालों के पास होते हैं। बड़े विचार माना सबको सुख देने की भावना, सबका कल्याण करने की इच्छा, सबको हम दें। बाबा सिखाया करते थे, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाए खाली हाथ न जाए। हमारे भारत की ये परंपरा थी, सन्यासी मांगने वाले बहुत आते थे। हम छोटे थे, हम देखते थे एक दिन में 10 तो आ ही जाएंगे, सबको अनाज देना है, थोड़ा थोड़ा भी देते थे। लक्ष्य होता था कोई भी खाली हाथ न जाए द्वार से। कभी कभी कोई सन्यासी ऐसा आ जाता था जो 2 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं होता था किसी के द्वार पे भी, बस अपने ढंग की अलख जगाई और 2-3 चक्कर वहीं लगाए, कोई नहीं देने आया तो आगे बढ़ गए। तो लोग बहुत ध्यान रखते थे, इनको खाली नहीं भेजना है। बाबा ने भी हमें सिखाया, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाए क्या लेकर जाए, ज्ञान न सुने तो बोलो, आगे बोलो, दिल खुश डब्बा रखना पड़ेगा। कोई शांति के वाइब्रेशंस लेकर जाए, कोई प्रेम की अनुभूति करके जाए, कोई हमारी नम्रता को देखकर जाए, कोई हमसे गुण सीख के जाए। आपके घरों में मेहमान आते हैं, माताएं बहुत बैठी हैं, भाई भी, वो बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, सीखते हैं या नहीं? नम्रता, जरा भी आप में क्रोध होगा उल्टा बोलेंगे ही, भले ज्ञान सुने ना सुने, पर कहेंगे तुम ओम शांति में जाकर भी गुस्सा करते हो। वैसे ओम शांति वालों गला नहीं करेंगे, पर देखते हैं ऊंची नजर से। तो हम सभी पूर्वजपन में स्थित हो जाएं। बाबा की एक बात पर मैं आपका ध्यान खिंचा दूं। छोटी कन्याएं बहुत बैठी हैं, मुरलियों में बहुत आता है। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना है कि अंत में एक बाबा ही याद आए और कुछ भी नहीं। और ये काम सहज नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं कह दूंगा कि बिल्कुल सहज है, हम सब कर लेंगे। क्या होता है, किसी की भी मृत्यु का समय जब नजदीक आता है तो उसकी मेमोरी बिल्कुल साफ हो जाती है। आपने देखे होंगे कई लोग मरने से पहले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, एकदम फ्रेश, लोग कहेंगे ठीक हो गए ये तो। उस टाइम मेमोरी फ्रेश हो जाती है। अभी ध्यान देना आप इन बातों पर, अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है, उस व्यक्ति की याद इतनी तेजी से आने लगेगी आप उसे हटा नहीं पाएंगे। आपके मन में किसी से बदला लेने की इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई, वो बलवती हो जाएगी इच्छा, बदला लेना है, वो बाबा को याद करने नहीं देगी। हाँ, और सुनो, अगर आपके अंदर किसी भी चीज में मोह ममत्व है, मोह ममत्व सबसे भारी चीज है ना, इसे छूटना सहज काम नहीं है। मोह ममत्व है और वो टूटा नहीं है तो वो इच्छा के रूप में, संकल्प के रूप में अपनी ओर खींचने लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोह ममत्व छूटे। मोह होता है मनुष्यों से और ममत्व होगा वस्तुओं से, खान पान से, वस्तुओं से, दोनों से हमें ऊपर उठना है। ऐसी अपनी नेचर बनानी है, इतना ईश्वरीय सुख हमको ले लेना है कि संसार के आकर्षण खींचे ही नहीं। तो बहुत अच्छा योग का अभ्यास भी हो लेकिन चारों ओर से बुद्धि निकलती भी जाए, सब चेक करेंगे अपने को, कहीं भी बुद्धि अटकी हुई है, कहीं भी कोई अशुभ भावना है किसी के लिए, बदले की भावना बहुत जबरदस्त है, ये बहुतों में रहती है, किसी ने तंग किया था उसे बदला लेना है, ले नहीं पाए जीवन भर। किसी ने पैसा लेकर दिया नहीं, बुद्धि लगी हुई है वहां। किसी का हमने नहीं दिया और हम बहुत खुश थे कि इसका 50 लाख का माल हमने ले लिया, चला दिया उसको, वो सब मृत्यु के समय ऐसा होगा कि जैसे वो लेने आ गए, घेर लिया है यमदूतों ने, पैसे दो 50 लाख तब जाने देंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए जिनकी लाइन क्लियर नहीं होगी उनको यहाँ के बंधन खींचने लगेंगे। इसलिए एक बहुत बड़ी चीज इस सृष्टि पर होगी, मुरलियों से है ये बात, बहुतों को नहीं पता है, कि विनाश काल में अनेक आत्माएं जल्दी जल्दी पुनर्जन्म लेंगी, एक एक डेढ़ डेढ़ साल में एक एक जन्म, क्योंकि जन्मने में और मृत्यु में ही सबसे ज्यादा विकर्म विनाश होंगे उनके। जन्म लेंगे भी बीमार, मरेंगे तो भी बीमार, वो जो एक साल का सुख है वो भी नहीं मिल पाएगा, ये सजाओं का काल होगा इस तरह। तो हम सभी बहुत अच्छा अभ्यास करें, ध्यान दें, ज्ञान के द्वारा चारों ओर से अनासक्त होते चलें। जो चीजें हमारे पास हैं, सबके पास हैं, गृहस्थियों के पास भी बहुत रहता ही है, बाबा उसके लिए क्या बताते हैं, मूल्यों में रोज आता है, माताएं नहीं बोल रही, बोलो क्या आता है, क्या होता है ट्रस्टी? सब कुछ बाबा का, इतना शायद है क्या? सब कुछ तेरा, पता है बाबा ले नहीं जाएगा इसलिए कह रहे हैं। हमको पता है बाबा के लिए हमारे 50-100 करोड़ भी कागज हैं, इतना तो वहां एक हीरा लगा होगा महलों में, वो ले तो जाएगा नहीं हमारे नोट, तो कह दो सब कुछ तेरा, बोलो उत्तर दो। कहना सहज है क्या? ये जानते हुए भी कि वो कुछ नहीं लेकर जाएगा तो भी कहना सहज नहीं है कि सब कुछ तेरा। मैं ठीक कह रहा हूं या नहीं? बहुत सूक्ष्मता है इसमें। सब कुछ तेरा तो जो विनाश होगा हमारा थोड़ा ही होगा, हमने तो भेज दिया, सतयुग में ट्रांसफर करा दिया। बच्चे किसके? कहने के लिए अच्छी तरह सोच लेना आज। सब कुछ तेरा कहना तो सहज है, पर जितना ये गुह्य है उतना और कुछ गुह्य नहीं होता। तन भी तेरा, तो इस तन पर और किसी का अधिकार नहीं, ये बाबा का है। मन तेरा, ये तो सबसे गुह्य बात है, इसकी तो व्याख्या भी नहीं की जा सकती। धन तेरा, ये सहज है, सेवाओं में लगाते रहो जो आपको लगाना, लेकिन जो आपके पास है उसमें भी ये भावना रखो, ये सब बाबा का दिया हुआ है, उसने ही दिया हुआ है, ये परिवार उसका है, उसकी आज्ञा से हम परिवार की पालना करते हैं। एक माता की एक हंसी की बात मुझे याद आ गई, सुना दूं? मेरा आगे कैमरा रखा इसलिए मुझे सोच के बोलना पड़ता है, ये रमेश कैमरा रख देता। एक माता अब मुर्गे बहुत खाती थी, ज्ञान में आ गई, अभी वो उसको बहुत इच्छा हुई मुर्गा खाने की, उसने बनाया और अपने वहां से बाहर आके खाया कि मेरा घर पवित्र न हो जाए, फिर स्नान किया, फिर खाके स्नान किया, मैं शुद्ध हो गई। देखो माताओं की कहानी, खाके स्नान कर लिया कि शुद्ध हो गई। सुना रहे थे लोग ये अभी जामेंगे, अब पता नहीं नई थी या पुरानी थी, तो आसक्तियां जाती नहीं ना। लोग ये भी नहीं सोचते कि नॉन वेज खाना पाप भी है क्या, सब खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। तो हम सभी ध्यान दें कहां हम आसक्त हैं, और ये समय है, मैं सभी को कहूंगा, भाइयों को पहले, इस समय अपने को कहीं भी उलझाए नहीं। ये सुंदर समय है, अंतिम अवसर बाबा से सब कुछ प्राप्त करने का। मुझे तो बिल्कुल क्लियर फीलिंग है 2020 के बाद शायद पुरुषार्थ का मौका न मिले। पुरुषार्थ तो तब तक चलेगा जब तक हम शरीर में हैं, पर वैसा पुरुषार्थ हम नहीं कर सकेंगे जैसा हम करना चाहते हैं। संसार में भूकंप होने लगे, मैं उदाहरण देता हूं, ट्रक जहां के तहां खड़े हो जाएं जो माल ढो रहे हैं, रेलवे लाइन टूट जाए, ट्रेन चले नहीं, संसार रुक जाएगा या नहीं? भारत देश की बात करें, रुक जाएगा या नहीं? दूध भी नहीं आएगा, भोजन भी, ये सब चीजें सप्लाई नहीं होंगी, बिजनेस ठप हो जाएंगे, आप कल्पना करो किसका योग लगेगा तब? सब दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बाबा को भी गाली देने लगेंगे, तुमने क्या कर दिया, अभी तो बिजनेस चालू किया था, अभी ये सब हो गया, ये सब सीन आ जाएंगे। इसलिए योग की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति अपने अंदर बढ़ाते चलें। उलझाना नहीं है कहीं भी, अगर हम उलझे होंगे तो निकलना बहुत कठिन होगा। सहज भाव से जीवन जीना है, साक्षी भाव अब से, मैं कहता हूं अब से बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। क्या साक्षी भाव? सबका भाग्य अपना अपना है। जो आपके अपने हैं ना, उनको ध्यान में रख के सोचना। आपके घर में 10 लोग हैं मान लो, इन सबका भाग्य अपना अपना है। सबकी, बहुत पावरफुल पॉइंट जो काम आएगी, सबकी कर्मों की कहानी अपनी अपनी है। वो मेरा बच्चा है इसलिए मुझे बहुत प्यार तो उससे होगा ही, लेकिन कर्म कहानी पर तो हमारा अधिकार नहीं है ना, वो तो सबकी अपनी अपनी है। आज ही एक परिवार मेरे पास आया, मैं चंदीवन गया था, विदेशियों की क्लास थी, टाइम हो रहा था, आ गए 3 माँ, लड़की, लड़का। लड़का युवा, 30 साल का भी नहीं होगा, जॉब में, बुरे संग में आकर, ज्ञान वाले सब। देखो ज्ञान वाले कुमार क्या गलती करते हैं, सब कुमार सावधान रहेंगे। बुरे संग में आ गया, जॉब में जहां था ऑफिस में, खाने पीने लगा, व्यसन, नशा लेने लगा, बहुत जल्दी हाल बिगड़ गया, ब्रेन ठप, आधा पागल। अभी लाए थे उसको मेरे पास, क्या करें इसका, आधा पागल हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, आधा बच्चा है, यही प्लस पॉइंट, ये ठीक कहता है। मैंने उससे बात की, समझते हो गलती की, बाबा का बनकर भी ये गलती कर दी, हाँ बुरे संग में आ गया मैं, पीने खाने लगा खूब। मैंने कहा देखो बाबा की मदद तो अब आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने पूरी अवज्ञा कर ली। उसकी माँ को मैंने कुछ सिखाया, माँ को तो बेचारी को चिंता होगी ना, यंग लड़का, बहन भी थी, ज्ञान में थी, कुछ चीजें सिखाई। ये जो आजकल बुरा संग है, नेट, फिल्में, पहले तो फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता था ना, ब्राह्मणों को लज्जा आती थी कोई देख न ले, अब तो सबके मोबाइल में है, लैपटॉप बैठ के बैठ, लैपटॉप खोल के बैठ जाएगा आपका लड़का लड़की, आप सोचेंगे पढ़ रहा है, बहुत मेहनत करता है मेरी मेरा बेटा, और वो कुछ और कर रहा होगा। गंदगी फैला दी विज्ञान ने, इसलिए बाबा कहता है विज्ञान इस समय विनाशकारी। घर घर में उसने सुख भी पहुंचा दिया, भोजन बनाना सहज हो गया, यात्राएं सहज हो गई, मोबाइल से कम्युनिकेशन सहज हो गया, लेकिन ये जो गंदगी आ गई डब्बे में, ये बहुत खतरनाक। पीछे कैंसर और में हमारे पास वो आया था ना, कौन सा है, जियो या उससे पहले क्या चल रहा था, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भारतीय है, हैं? नहीं बीएसएनएल में कुछ और था, शायद एयरटेल का था, तो बता रहा था कि आप लोग ही अच्छे हैं इससे बचे हुए, हम तो रहते, हमारे यहाँ भी कई लोग गड़बड़ कर रहे हैं अंदर ही अंदर। कहा ये सब गंदगी है, मैंने अपने छोटे बच्चों को अब तक मोबाइल ही नहीं दिया है, उन्हें समझा दिया है ये गंदगी है। आयु उसकी ज्यादा नहीं थी, मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, 90 करोड़ एक साल की आमदनी, भारतीय, साउथ इंडियन है, यंग, अभी मैंने समझा 35 साल से ज्यादा नहीं होगा, 2 बच्चे उसको, एक इतना, एक इससे थोड़ा बड़ा है, छोटा जो बैठा। कहा मैंने मोबाइल दिया ही नहीं है। देखो वो जो उसका मालिक है वो कह रहा है इसमें कितनी गंदगी है, आप लोग ही अच्छे हो, इनसे दूर रहना। तो ये विज्ञान जिसको लोग वरदान समझते हैं, ये अभिशाप भी बन गया, और एटॉमिक वॉर से पहले, विश्व युद्ध से पहले, ये अनेकों के जीवन को नष्ट कर रहा है। डिप्रेशन बढ़ रहा है युवकों में बहुत, बड़ों में नहीं बढ़ रहा, युवकों में बढ़ रहा है जो इन चीजों पे रहते हैं। इसलिए आप सभी यहाँ युवक, बहनें और भाई बहुत बैठे हैं, इन सब से मुक्त। मोबाइल है मेरे पास भी है, केवल सेवा के लिए, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता और कुछ देखें। अब तो मेरी आंखों में भी तकलीफ हो गई, बाकी भी छोड़ दिया, कुछ भी देखना छोड़ दिया, बस फोन आया सुन लिया, उत्तर दे दिया, मुरली सुन लेते हैं एक बार अपने मोबाइल में और यूज नहीं। तो ये हमारे लिए वरदान होगा। अब बहुतों ने किया हुआ है, क्लासेज भर लेते हैं आजकल सब है, सुनते रहते हैं, कार में चला दिया, खाली है, मूल क्लास सुन ली, ये है इनके सदुपयोग। सभी सदुपयोग करेंगे विज्ञान के साधनों का, दुरुपयोग नहीं। और माताएं अपने बच्चों के लिए साक्षी भी रहेंगी, मैंने दो बातें कही, सबका भाग्य अपना अपना, सबके कर्मों की कहानी अपनी अपनी। आपको यदि उनसे प्यार है, मैं माताओं को कह रहा हूं, तो अपने घर में योग के पावरफुल वाइब्रेशंस बनाओ। आपके बच्चे गलत मार्ग पे जाएंगे ही नहीं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन माताओं ने अपने घरों को बहुत अच्छे वाइब्रेशन से भरा हुआ है, उनके बच्चे माँ बाप का सम्मान बहुत करते हैं और उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो मोबाइल रखते ही नहीं, का मोबाइल से क्या हमें मिलेगा, अभी हमारे पढ़ाई का समय है, माँ बाप के अच्छे वाइब्रेशन के कारण। और माँ ही फोन पे लगी हुई सारा दिन, देखिए कहानी आई थी, वो माँ गर्भवती थी, फोन पर लगी रहती थी, बच्चे ने जन्म लिया, 10-15 दिन का ही हुआ था, माँ से फोन छीनने लगा, तुम बात करती हो मैं भी तो करूं, संस्कार पूरे आ गए, ये तो आते ही हैं। कई माताओं ने नहीं, अभिमन्यु वाली कहानी कई माताओं ने साकार कर ली है। हमारी बॉम्बे की दो डॉक्टर बहनों ने गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट चलाया हुआ, सरकार ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा कुमारियों को जोड़ दिया उससे। एक माता ने मुझे ही सुनाया कि ये बच्ची जन्म लिया, जब ये गर्भ में थी मैंने इसको पूरा ज्ञान सुनाया है गर्भ में, और ये जन्म लेते ही बाबा करती है। ऐसे 5-7 उदाहरण अभी अभी इसी साल में हो गए हैं। ये सत्य है कि बच्चों में गर्भ से ही अगर माताएं अच्छी चीजें भर दें, वो जीवन भर उनके साथ चलेगी, क्योंकि वो उनके अंतर मन में समा जाएगी। तो सभी अपने घरों के माहौल को पावरफुल बनाएंगे, समस्याएं रहेंगी नहीं। ठीक है, तो स्मृति स्वरूप होना, स्मृतियों की लिस्ट बना लेना, बाबा ने हमको क्या क्या याद दिलाया। ओम शांति।